ஓம் சாந்தி. கர்ம போக் ஆர் கர்ம யோக் दो विषय हैं, ऐसा इतिहास में कहीं पढ़ने को नहीं मिलता कि कोई कर्म योग से कर्म भोग पर विजय पाया हुआ हो। एक बार रामकृष्ण परमहंस को ये कहा गया कि आप इतना योग करते हो तो उसका प्रयोग क्यों नहीं करते। उनको थ्रोट कैंसर था तो उन्होंने कहा, मैंने जो योग किया है वो आत्मा के लिए किया है, शरीर के लिए नहीं किया है। ऐसे ही कोई उदाहरण और हमको, मुझे व्यक्तिगत नहीं पढ़ने को मिला, पर विशेष जब हम ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, तब कहीं जाकर के इन दिनों में यह शब्द विशेष प्रयोग में आता है। कई बार हमको ये सुनने को मिलता है कि जब बाबा के बनते हैं तो पता नहीं कहां कहां से यह कर्म भोग निकल के आता है, उभरता है, ऐसा सुनने को मिलता है। कभी हम ऐसी दवाई लेते हैं तो लोग कहते हैं, आप तो ब्रह्मचारी हो, योगी हो, इतना शुद्ध अन्न लेते हो, इतना ये ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हो, तो आपको रोग क्यों होना चाहिए, बीमारी क्यों आनी चाहिए, ऐसा प्रश्न अक्सर पूछते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे सिर पर एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का पाप भरा हुआ है, और जब हम किया हुआ है ऐसा कर्म विकर्म तो निश्चित ही उस कर्म का फल भी हमें ही भोगना पड़ता है। और फिर जब कोई यह ज्ञान देते हैं तो उनको ऐसा समझाना चाहिए कि आजकल पढ़ाई में ना सेमिस्टर सिस्टम होता है, उसमें विशेष करके मैंने देखा इंजीनियरिंग में 8 सेमिस्टर होते हैं, तो 7 सेमिस्टर उनको ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं, 8वें सेमिस्टर में उनको 7 सेमिस्टर क्लियर करना पड़ता है। ऐसे हमारा भी ये 84वां जन्म है, आज तक हमारे किए हुए का ऐसे ही आगे बढ़ाते आए, अब ऐसा नहीं होगा। अब सारे पिछले 63 जन्मों में जो भी हमने किया है उसको यहाँ चुकतू करना होगा, यह एक नियम है, बंधन है। कल आपने मुरली में सुना, मुरली जिन्होंने सुनी कल, कुछ तो इसमें भाई बहन ट्रेन में होंगे वहां भी सुना होगा, मुरली में कहा, बाबा को मुरली सुनाते सुनाते खांसी आई, तो बाबा ने कहा बच्चे ये आती रहेगी, हिसाब है, आखिर तक ये चलता रहेगा। खुद बाबा ने ऐसे कहा, आखिर तक ये चलता ही रहेगा, जब यह पूरा होगा तो फिर ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, ऐसे बाबा ने कहा। क्योंकि जब बिल्कुल ही हम निरोगी हो जाते हैं तो ये शरीर फिर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नया शरीर मिलेगा, कुछ रहेगा तो फिर। और बाबा ने कहा गर्भ में जो होते हैं तो फिर वहां बहुत तकलीफ भोगनी पड़ती है। तो ये सारा ज्ञान हमको अब मिल रहा है। अब जो ये गीता श्रीमद् भगवद गीता वाले होते हैं उनके पास तो यह है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा काम है कर्म करना, तू उसके फल की इच्छा मत रखना, ऐसा बोलते हैं। जब काम किया और ईश्वर को अर्पण कर दिया तो फिर वहां कर्म भोग का प्रश्न नहीं उठता है, कर्म भोग का प्रश्न नहीं उठता है। कर्म किया वो ईश्वर को अर्पण कर दिया, अब ईश्वर को अर्पण कर दिया तो ईश्वर जाने, हमको क्या पता क्या होता है। परंतु ऐसा नहीं होता है, बोलने से काम नहीं चलता है, क्योंकि कर्म सिद्धांत ही ये बोलता है कि जो करोगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो यू रीप, ऐसे बोलते हैं। कोई नहीं मानते हैं तो उनको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ एक्शन ये बोलता है कि एक्शन जो भी होते हैं उसका रिएक्शन जरूर होता है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऐसा होने पर इक्वल एंड अपोजिट जो रिएक्शन है वो उसको ही होगा जो करता है, जिसको अर्पित किया उसको नहीं होता है। तो ये क्या मामला है, समझ में नहीं आता है कई बार। और जो फिर से हम गीता की तरफ मुड़ते हैं तो बहुत अच्छा है, जो हमारे ईश्वरीय ज्ञान से बिल्कुल मिलता जुलता है कि वहां ये कहा गया कि योगः कर्मसु कौशलम, योग जो आप कर रहे हो वह योग हमारे कर्म में कुशलता लाता है, हमें एक्सपर्ट बनाता है। वो हम यहाँ यज्ञ में देखते हैं, हमारे भाई बहन जो भी कार्य कर रहे हैं उनको जो कार्य मिला हुआ है वह कार्य बहुत बखूबी वो निभाते हैं, हालांकि उसमें उन्होंने स्टडी नहीं की हुई है, उसके बावजूद भी हर सिस्टम में वो फिट बैठे हुए हैं और उनका ज्ञान अद्वितीय है, उनका प्रैक्टिकल अद्वितीय है। ये वंडरफुल एक्सपर्टाइजेशन हो गया। ऐसे कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ योगा। अब योगा जहां हम बोलते हैं वहां पर उसका अर्थ निकलता है, योगा यूज टू कनेक्ट, योगा यूज टू कनेक्ट। जहां कनेक्शन का सवाल आता है वहां फिर से दो होने चाहिए, जो कनेक्शन एक दूसरे से होता है तो वो किसी को पता नहीं है कि ये किसका कनेक्शन किसके साथ होता है। बोल तो दिया उसने योगा यूज टू कनेक्ट, मगर किसका कनेक्शन किसके साथ होने से वो योग कहलाया जाता है। अब योगा वहां कहा कि कर्म में कुशलता होती है, तो ये कुशलता कैसी होती है, उससे सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसके लिए फिर वहां कहा गया स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिम विन्दति मानवः। हर एक मनुष्य जिस जिस कर्म में नियुक्त है उस कर्म के माध्यम से वह पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है। यह भी उनके पास कोई ठोस उत्तर नहीं है। अब जब हम यहाँ मधुबन में खास देखते हैं, सेंटर्स की तो बात अलग है, मधुबन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर स्वे स्वे सिद्धिम अभिरत, अपने अपने कर्म में जो व्यक्ति हैं वह कर्म करते हुए भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जो कपड़ा धोते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, जो रोटी बनाते हैं, इनके भी कर्म का फल अपने ढंग से वैसा ही होता है जैसे जो भाषण करते हैं या दूसरा कार्य करते हैं, वे अपने में परफेक्ट हैं। तो ऐसा कर्म करते हुए भी वो सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो अब वो ऐसा कर्म करते हुए भी वो कैसे प्राप्त करेंगे ये नहीं समझाया ऐसे जनरली, परंतु वहां पर ये भी कहा गया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म योग में रह करके करो। तो वो समझते हैं कर्म करना ही योग है, जैसे वो कहा गया कि खेती करता है कोई, धंधा दोरी करता है, व्यापार व्यवहार करता है, तो समझिए वो कर्म करता है, ये कर्म ही ईश्वर है। पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा समझ के कर्म करने से उसका फल कोई उसको ऐसा नहीं प्राप्त हुआ जो वह नरो नारायण बना, ऐसा नहीं हुआ। अब ये योग में रह करके कर्म करना यह नहीं सिखाया गया कहीं भी, वो यहाँ बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कि जो जो कर्म करते हो बच्चे उसे योग में रह करके, योग थोड़ा क्लिष्ट पद होता है, हार्ड वर्ड होता है, तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे ये योग आप करो ही नहीं, आप याद करो। ये कितना सरल शब्द हो गया याद करना, तो आप याद करो। तो याद करने से, अब याद जो करते हो तो कहता है बाबा ऐसे ही कोई निष्ठा में नहीं बैठना है तुमको, ऐसे ही कहीं जाकर के सिद्ध कोई आसन डाल के नहीं बैठना है, चलो करके तुमको एक टाइम दिया गया सवेरे 4 से 4:45 तक का, या 6 से 6:30 तक का, या शाम में 6:30 से 7:30 तक, ये अलग बात है, ये तो करो। परंतु बाबा की याद में और आत्मा की याद में रह करके तुमको कर्म करना है। आत्मा की भी याद होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि कल तक हमने ये नहीं जाना था कि हम कौन हैं, आज हमको ये पता पड़ गया है कि हम कौन हैं। और हम कौन हैं ये केवल इतना ही नहीं कि हम एक आत्मा हैं, नहीं बल्कि हम कैसी आत्मा हैं। आत्मा की जो हाईएस्ट क्लाइमेक्स गुण है उनको भी साथ साथ लेना है, याद करना है। तो ये भी एक विशेषता बाबा ने समझाई कि बच्चे जैसे भक्ति में हम नीच पापी खल कामी पाप हरो देवा ऐसे बोलते थे, परंतु ऐसा बच्चे ये गलत है। और जब कनेक्शन की बात आती है तो पापी और परम पुरुष दो का मेल नहीं होता है, ऐसा हो नहीं सकता है। कोई नीच व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति से दोस्ती करे ऐसा नहीं हो सकता है ना, कोई राजा कोई रंक से दोस्ती करे या रंक राजा से दोस्ती करे ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने भी कहा कि बच्चे तुम हो शांत स्वरूप आत्मा। जैसे कल बाबा ने कहा कि तुम मैं परम आत्मा हूँ, बीज रूप हूँ, तो बच्चे तुम भी कोई कम नहीं हो, सच्चिदानंद सत आत्मा है, चित आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। तो अपनी याद भी करो साथ साथ मेरी याद भी करो, ताकि दो की याद मिलने से वह याद, वह योग, वह याद कर्म में भी ऐसा ही एक स्थिरता लाती है। जो हम कर्म करते हैं कितनी मेहनत लगती है हमको बिना क्रोध के कर्म करने में, क्रोध तो कॉमन है, ये बहुत आता है, हर व्यक्ति को आता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो किसी ने अपने जीवन में क्रोध किया ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा होता है। क्रोध नहीं किया तो नाराजी लगा की होगी, नाराज रहना, उसके बाल बच्चे बहुत हैं क्रोध के, तो उनका भी ज्ञान बाबा ने दिया हुआ है हम बच्चों को। तो इस रीति से जो योग में रह करके कर्म करने की बात है, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रह करके कर्म करो, तो अब समझ में आता है कि याद में रह करके कर्म करना है। तो वो याद में रह करके कर्म करने से क्या होगा, तो हमारे कर्म अच्छे होंगे ऑटोमेटिकली, हमारे कर्म शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, वो शांतिपूर्ण होंगे, वो श्रेष्ठ होंगे। अब हम ये जानते हैं कि इस जन्म में हमने क्या क्या किया, उसका भोग तो होता ही है डायरेक्टली। अब जो हम अनेक जन्मों से जो भी किया हुआ है, तो वह भी चुप्त होना चाहिए, क्योंकि तेरी गठरी गठरी में है ना, पाप की गठरी बंधी हुई है, वो गठरी धीरे 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 निकलती है, तो वो जैसे भी निकले उसको तो भोगना है। तो लोग क्या करते हैं, समझिए कोई कर्म भोग आया, कोई बीमारी आई, तो वो बीमारी उनके पास और मल्टीप्लाई होती है, एक के गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ती है, क्योंकि वो बार बार उसका उच्चारण करते हैं, मुझे ऐसे हुआ, मुझे ऐसे हुआ, मुझे ऐसे हुआ। नहीं, बल्कि ये हमारा हिसाब है, उसको साइलेंस में रह करके जितना जैसे मैंने कहा अभी अभी कि बाबा ने कहा कि बच्चे ज्ञान डांस करो, डांस करो, तो अब किसी को कोई दर्द हो रहा, अब ये ज्ञान डांस क्या है आपको पता है, ज्ञान डांस क्या है, कोई शरीर का डांस तो है नहीं ना, ज्ञान डांस क्या होता है, वो तो बाबा ने ना सीधा नहीं बोला, पर होता ऐसा है ही। पहले बाबा बहुत गहरी मुरली चलाता था, वो मुरली अब भी पढ़ते हैं संडे को तो अलग ही नशा चढ़ता है, पर इन दिनों में आप देखेंगे सारा साल पिछली बार बाबा ने कई बार बच्चों को ये बोला कि वाह बाबा, वाह बाबा, वाह मैं, वाह रे ड्रामा, वाह बाबा, ये है ज्ञान डांस, ये वाह मैं, वाह बाबा, वाह। अब जब आपको कोई पीड़ा होती है, दर्द होता है बीमारी में, उस दर्द के समय आप ये ज्ञान डांस कर पाएंगे क्या, क्या वो दर्द का अनुभव आपको होएगा? आप देखेंगे हम अनुभव करते हैं ऐसा कि ज्ञान डांस करना, या ऐसा अंतर में ऐसे याद करना कि वाह बाबा, वाह रे मैं, वाह रे ड्रामा, कभी कभी लगता है ऐसा करना संभव नहीं होता है, दर्द इतना, पीड़ा इतनी होती है, वो पीड़ा इसको ओवरटेक करती है डांस को, ऐसा महसूस होता है। परंतु ये बाबा की युक्ति है कि इसमें भी ऐसा तुम डांस करो, ये डांस ही आपको उसमें मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि एक तरफ तो खुशी अंदर में पैदा करने के लिए वाक्य हैं, और साथ में जो दर्द है उसको जज्ब करने के, एब्जॉर्ब करने के, उसको कम करने की युक्ति है ऐसा। तो हम देखते हैं जिन किनों को भी मैंने देखा यज्ञ में, जो भी सीनियर हैं या जूनियर हैं, कोई भी उनको बीमारी आती है, उनको आप पूछेंगे कैसे हो, तो कहेंगे हाँ हम ठीक है। तो लौकिक में ऐसा नहीं होता है, किसी को जो बीमार व्यक्ति को आप पूछेंगे ना कैसे हो, तो वो आपके सामने अपना ड्रामा पेश करेगा, यहाँ है वहाँ है, सारा हिस्ट्री क्रिएट करेगा। तो उसको अच्छा लगता है, वो कहता है ऐसा बोलेंगे तो हम हल्के हो जाएंगे। बल्कि ऐसा नहीं होता है, हल्के नहीं होते हैं, इसके बजाय और ही वो एक आध गुना दर्द भी रहेगा ऐसे ही, और अंदर में आपको बोलने लग बोलना बोलना तो बोलने में वहां याद नहीं हुई ना, वही नरेट करेंगे, वही एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो बाबा की याद भी नहीं रही, आत्मा की वाह वाह की याद नहीं रही, क्योंकि वाह वाह के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है ये आत्मा के आत्मा की पीड़ा को अंदर ही अंदर जज्ब करने का। दूसरा बोले कि इतनी पीड़ा के बाद भी आप इतनी जल्दी कैसे ठीक होते हो, क्योंकि देखते हैं ना वो, हमारे पास अनुभव ऐसा है कई आत्माओं का, कई भाई बहनों का। हमारी बड़ी दादी को कोई भी पूछता था, जबकि डॉक्टर हैरान होते थे कि दादी ये कैसे है, तो दादी तो कहती थी हम अच्छे हैं, ठीक है। तो दूसरे लोग कुछ कुछ बोलते थे, ये ऐसी कैसी पीड़ा है, इतनी हेड है दादी हमारी, इतनी पुरातन है, इतने दिनों से ज्ञान में है, इतना यज्ञ चलाती है, तब भी ऐसे कैसे होता है। वो हम बोलते हैं पर वो नहीं बोलते हैं, उनके मुंह से ऐसा नहीं निकलता, क्योंकि उनको पता है ये क्या हो रहा है। हर एक को पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये वो हो रहा है जो हमारे जन्म जन्मांतर, क्योंकि हमारे को ये कहा गया है कि जो कर्म आपने किए हैं उसको बुरे कर्म विकर्म जो किए हुए हैं उनके उनको निकाल फेंकने के लिए दो रास्ते हैं, योग भोग, भोग वो योग भोग या कहो योग रोग, या तो योग करो इतना और जो जीत जाओ, या नहीं तो भोगो उसको। अब वो भोगना है तो खुशी से भोगो। हम देखते हैं, हम एक बार एक शहर में गए थे और वहां वो बहन ने कहा एक भाई का फ्रैक्चर हुआ है और वो आप मिलेंगे तो वो खुश हो जाएगा। हम कहे ठीक है, तो हम वो हॉस्पिटल में गए तो वो एक भाई आगे जाकर के बोला ऐसे भाई जी आ रहे हैं, तो वो जो स्ट्रेच का पत्थर डाला हुआ था वो उसने उठा करके वो ऐसे रख के बैठ गया, ओम शांति। अब उसका दर्द सारा जैसे उसने अंदर जज्ब कर लिया। ये वर्ड भी ऐसा बाबा का है, इस बारे भी बाबा की जो पहली मुरली चली उसमें बाबा ने ओम शांति के कितने रहस्य समझाए, और बाद में रमेश भाई ने जब क्लास कराया उन्होंने भी उसको बहुत डिटेल में बताया। तो ये विशेषता है हमारे ज्ञान में आने की। कोई कहते नहीं हम ज्ञान में नहीं आते, दूसरे बोलते हैं ज्ञान में नहीं आते तो अच्छा होता, या वो कहेगा आपको कि आप ये पूजा छोड़ दिया, बाबा भी कहता है ऐसे, कोई बुखार आए कुछ हुआ तो भी बोलेंगे तुम अभी वो भक्ति छोड़ दिया ना इसलिए ऐसे हो गया, वो देवता को छोड़ा ना इसलिए ऐसे हुआ। नहीं, वो देवता को पकड़े हुए होते तो भी ऐसे होता था, क्योंकि ड्रामा में जो नूंद है वो तो कोई नहीं मिटा सकता है। बाबा भी खुद कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, हर कार्य के पीछे एक सुंदर ड्रामा हमारे साथ है। जैसे दादी जानकी कहती है हमारी ब्रह्मा माँ है, ऐसे ड्रामा भी माँ है, और माँ पालना करती है। माँ जब हाथ से बच्चे को ऐसे संवारती है तो उसको सारे दर्द पीड़ाएं वो बच्चा भूल जाता है। आप देखेंगे जो बच्चा रोता है माँ करके उसको ऐसे दृष्टि देती है ना, वो दृष्टि देने से ही वो उसके आंखों में आंसू भी रहते हैं और वो हंसने लगता है, किलकारियां भरता है। तो क्या हुआ, क्या उसने साइकोलॉजिकल जादू किया? जादू नहीं किया, बल्कि उसके अंदर जो प्रेम स्नेह और अपनापन था वो आंखों के द्वारा उसको पहुंचाया, क्योंकि आंखें बड़ा वंडरफुल काम करती हैं। इसीलिए बाबा ने भी ये दृष्टि देने का लेने का एक यज्ञ में बनाया, सिस्टम कि भाई ऐसे दृष्टि लेना है, ऐसे और कहीं भी दृष्टि लेना वो होता है, हिप्नोटाइजेशन जब करते हैं तब थोड़ा सा कहते हैं ऐसे देखो, यहाँ कोई हिप्नोटाइजेशन नहीं है बल्कि वास्तविकता है। कई लोग हमको पूछते थे, हम एक बार मेले में थे 1973 में, वहां एक आया वो बोला कि आप आंख ऐसा देख करके जादू करते हो। हमने कहा भाई जादू हम नहीं करते हैं, सारी दुनिया में ये जादू भरा पड़ा है। देखिए हम आत्मा कहीं से आए रहते हैं, यहाँ आते हैं तो किसी को माँ, ये कहाँ से आई माँ बाप, वो जादू करते हैं माँ बाप फिर तो। और एक दूसरे लड़की घर दूसरे घर की लड़की होती है, उसको जब शादी करके लाते हैं तो वो अर्धांगिनी बन जाती है, हमारी सारी प्रॉपर्टी की हाफ पार्टनर बन जाती है। ये क्या जादू है? एक पैसा भी नहीं देने वाला व्यक्ति उसको हाफ प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है। तो सारी दुनिया जादू पर ही चल रही है, पर वो अच्छी है। और हम जो कर रहे हैं इसमें कोई जादू नहीं है सच में, इसमें तो स्नेह अपना अपनापन है, हमारी ओरिजिनल नेचर ट्रांसमिट एक दूसरे की हो रही है, ये हमारे ध्यान पर रहना है। इसीलिए जो हम ये जो कर्म भोग है हम ब्राह्मण आत्माओं को विशेष करके होता है, क्योंकि शुरू से हमने देखा यज्ञ के आदि से, जैसे ब्रह्मा बाबा समझिए हमारे आदि पुरुष हैं, आदि पिता हैं, वहां उन्होंने कैसे अपने कर्म भोग को योग के माध्यम से उसको दूर भगाया और एकदम शांत स्थिति से शरीर छोड़ा। अभी भी आप कभी सुनते होंगे दादी जानकी कैसे कहती है, या मैं जैसे गुलजार दादी बाबा मिलन के टाइम पर ट्रांस में ऐसे जाती है तो दादी कहती मैं भी ऐसे ही शरीर छोड़ूंगी, ऐसे मुझे बाबा से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे ही छुड़े झटके में। तो ये भी हम देखते हैं कि वंडरफुल बातें यहाँ सुनने को मिलती हैं, अनुभव करने को मिलती हैं। तो इसीलिए कर्म भोग से कोई डरे नहीं, कर्म भोग से कोई दुखी ना हो, कर्म भोग से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि यह है एक रास्ता है हमारे पुराने कर्मों को सफा करने का, क्योंकि वो बहुत हैं। और सबसे ज्यादा एक कल्प में हमने ही जन्म लिया है, हमारे सिवाय और कोई नहीं जन्म लिया, और फिर हमने जो जन्म लिए हैं वो बाबा कहता है 84 जन्म लिए हुए हैं। तो कई बार आप लोग के सामने एक प्रश्न आता है कि सतयुग में 8, त्रेता में 12 है ना, 21 द्वापर में और 42 कलयुग में और एक संगम पर। एक संगम पर तो वो कलयुग का ही जन्म है वास्तव में, फिर भी 83 ही जन्म होते हैं 83। अब कई बार 84th जन्म के बारे में कईयों ने कई तरह से उसका वर्णन किया, उसको बताया, पर मैंने खास करके देखा जब संगम में एक जन्म बाबा बोल रहा है, बाकी जो जन्म अब हम लिए हुए, आज हमको जो शरीर मिला हुआ है जिस नाम से, ये शरीर तो कलयुग का है। और बाबा कहता है हंस और कौवे एक साथ नहीं रह सकते, पर फिर भी हम रह रहे हैं कौओं के साथ, एक साथ रह रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं। और फिर कितना भी कोई हिम्मत करे, मेहनत करे, फिर लगता ऐसे है अभी कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार में हम आ जाते हैं। ये सबका अनुभव है, सब मानते हैं इस बात को कि हाँ ये तो बात बराबर है, थोड़ा थोड़ा तो आ जाता है। आ जाता है तो फिर नहीं आना चाहिए, जब नहीं आएगा तभी हम सतयुग में जाएंगे। तो तब हमको एक विचार संकल्प स्ट्रांग आया कि ये जो हमारी मम्मा से लेकर के शरीर छोड़ रहे हैं, तो बाबा ने एक दो सप्ताह के बीच में कहीं मुरली, बाबा की मुरली चली, उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे कलयुग में भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं, बड़े रॉयल रहते हैं, कोई झगड़ा कोई गाली गलौज को कुछ भी उनके अंदर नहीं होता है, बहुत रॉयल रहते हैं, ऐसे परिवार भी बाबा के देखे हुए हैं। तो ये जो परिवार हैं जहां मम्मा से लेकर के कई एडवांस पार्टी वालों ने जन्म लिया और अभी भी कोई शरीर छोड़ रहे हैं, तो ये सब जाकर के जो जन्म लेंगे ये उनका 84th जन्म होगा, ये हमारा 84th जन्म होगा, हम ही 84 जन्म लेंगे। तो जो ज्ञान में आज आए हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं कर्म योग की, कर्म में योग की, योग में रह करके कर्म करने की, आत्मा स्थिति में रह करके, स्वस्थिति में रह करके, स्वमान में रह करके, स्वाभिमान में रह करके जो कर्म करते हैं, कर्म करते करते फिर ये जो शरीर छोड़ेंगे, तो ये जो शरीर छोड़ेंगे अब वर्तमान में, तो बाबा एक तरफ कहा गया है योगी ही श्रीमताम गे है, जो योगी होते हैं तो योगी तो हम ही हैं, बाकी दुनिया में जो योग है वो या तो शरीर से संबंधित है मोस्ट प्रोबेबली जो लोग मानते हैं, अब जो प्रसिद्धि हुई है जो भी योग गुरु कहलाते हैं वो तो आसन लगाते हैं, आसन को ही योग बोलते हैं कोई, या फिर बाबा जैसे कहता है कि कठोर तकलीफ शरीर को देते हैं, बाबा जैसे कहता है कोई शरीर को मिट्टी में आधा तक गाड़ देते हैं, या सिर को आधा तक गाड़ते हैं, या पानी में ठहर जाते हैं, या एक टांग पर ठहर जाते हैं, ऐसा ऐसा होता है, आपने देखा अनुभव किया। तो ये जो भी है अनुभव जो भी है जहां भी, इनको ही वो लोग योग मानते हैं। अब पतंजलि का अष्टांग योग लेंगे तो भी वहां भी आप देखेंगे कि यमाह नियमाह आसनह प्राणायाम, तो उन्होंने यम नियम को छोड़ ही दिया, अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह ये उसकी बात ही नहीं निकालते हैं, सिर्फ सांसों की और शरीर की बात निकालते हैं। हाँ उससे लाभ होता है, शारीरिक प्रक्रियाओं में थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं, इसमें कोई दो बात राय नहीं है, परंतु फिर भी उसकी लाइफस्टाइल नहीं बदलती है। मैंने देखा कि उनकी लाइफस्टाइल नहीं बदलती है, उनका खानपान नहीं बदलता है, वही शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, चिकन खाएंगे, अंडा खाएंगे, वैसे ही रहेंगे कलियुगी नारकीय जीवन में, वही विकारी जीवन जीते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनमें। तो ऐसा होने से फिर वहां पर वही काम वही विकारी जीवन हो गया ना, उसमें फर्क कहाँ पड़ता है। योगी ऐसे नहीं लगते, जैसे हमको बाबा ने सिखाया बच्चे इसमें कोई आसन डालने की भी जरूरत नहीं है, एक सप्ताह पहले ही बाबा ने कहा अच्छा बैठो, बैठ करके योग निष्ठा करो, समझो बैठना नहीं होता है तुमको तो लेट करके याद करो, कैसे बाबा इजीएस्ट वे में हमको याद करना सिखाता है। तो ये योग है जहां पर अहिंसा की, सत्य की, चोरी नहीं करने की, लोभी नहीं बनने की और ब्रह्मचर्य की बातें सिखाते हैं। लोग पवित्रता की बात सुनकर ही कोसों दूर भागते हैं, ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मचारी पहली बात वही, जो भी आपको पूछेगा आप ब्रह्मा कुमारी के हैं तो हाँ तो बोलते ही, फिर दूसरी बात पूछेगा कि आप शादीवादी नहीं करते हो ना, ऐसे है।
ऐसा और कहीं भी नहीं है। कोई दूसरे योग का योगी है तो उसको कोई नहीं पूछेगा कि तुम शादी नहीं करोगे ना, ऐसा नहीं पूछेगा। वो कितना भी आसन लगाता होगा परंतु ये बात नहीं पूछी जाती है। और हम देखते हैं खान पान में भी लोग ये समझते हैं ये तो कुछ नहीं खाते पीते हैं, तो ऐसी बात बाहर में नहीं होती है। तो अब ये अन्न शुद्धि भी बाबा ने सिखाई है, तो क्योंकि कहा गया कि अन्न न जातो मनसः, ये अन्न से ही मन में संकल्पों की उत्पत्ति होना नहीं होना वो अन्न से संबंध नहीं, अन्न से शुद्ध संकल्पों की उत्पत्ति होती या बुरे संकल्पों की उत्पत्ति, क्योंकि संकल्प उत्पत्ति होना वो तो नेचुरल है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। संकल्प करना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे टाइम एंड टाइड नेवर स्टॉप्स, आप समय को और समुद्र की लहरों को कभी रोक नहीं सकते, ऐसे ही संकल्पों को भी रोक नहीं सकते हैं। तो आप नहीं रोक सकते हैं तो याद में रहना माना आत्मिक संकल्पों की उत्पत्ति करना, श्रेष्ठ संकल्पों का उत्पत्ति करना। तो जितना वो कैसे हमको नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर अब ये संकल्प कहाँ से आते हैं बुरे, तो संकल्पों का स्टोर रूम, वेयर हाउस, गोडाउन, संकल्पों का गोडाउन है संस्कार। ये जो संस्कार हैं कई जन्मों के हैं, जैसे हमारे संस्कार जो होते हैं ना वो हमारे पिछले जन्म के होते हैं, और इस जन्म में जब हम गर्भ में होते हैं तब भी माँ के कई संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं। जब जन्म लेते हैं तो बाप के संस्कार, बड़े भाई के संस्कार, टेंडर एज में बाल्य अवस्था में ये संस्कारों का जमा होता है। जो कुछ भी है 12 साल के अंदर कई संस्कार हमारे अंदर जमा होते हैं, और ये संस्कार ही हमारे संकल्पों के कारण होते हैं। कितनी भी मेहनत करेंगे, जैसे कहा जाता है ना आदत बुरी बला है, तो आदत बुरी बला, ये आदत कहाँ से आती है? आदत कहाँ से आती है? प्रीवियस पूर्व कर्मों से आती है। ये पूर्व कर्म जो हमने किए वो कहाँ थे? वो संस्कारों में निहित थे। तो ये जो संस्कार के आधार पर ही किसी व्यक्ति को हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बड़ा सुसंस्कृत है। सुसंस्कृत व्यक्ति का तात्पर्य है कि अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति। तो संस्कार जो हमको हमारे लौकिक से मिलते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। अब उनको निकालना है तो फिर वो ईश्वरीय, हम जब मधुबन आते हैं तो यहाँ मधुबन में हम देखेंगे अनेक संस्कार वाले भाई बहने होते हुए भी हर चेहरा खिला हुआ रहता है। या जिस किसी भी से मिलेंगे आप 10-100 व्यक्तियों से, आपको ओम शांति करना पड़ेगा, और जब भी ओम शांति आप करेंगे आपको जरूर मुस्कुराना पड़ेगा। ऐसे आप घर में नहीं करेंगे, घर में एक दो होते हैं, बाकी सब तो जिसको देखेंगे उससे टेंशन ऐसे स्टिमुलेट करता है, टेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, मेरा जहां तक अनुभव है। और यहाँ ऐसा नहीं होगा, जैसे कोई व्यक्ति से आपका भिन्न होगा विचार, फिर भी वो व्यक्ति सामने आएगा तो भी आपको ओम शांति बोले या वो ओम शांति बोले तब भी आपको मुस्कुराना जरूर पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो मुस्कुराहट क्या करेगी? एक दो अच्छे संकल्पों की उत्पत्ति, एक दो अच्छे संस्कार अंदर जमा करेगी। और जब सेंटर में भी कई पूछते हैं लोग रोज क्यों सेंटर में आना, तो सवेरे सवेरे हमारी एक घंटे की प्रैक्टिस होगी मुस्कुराने की। कई बार बाबा के वाक्य सुन करके मुस्कुराते, भाई बहनों से मिल करके मुस्कुराते, तो और क्या चाहिए मनुष्य को मुस्कुराहट के सिवाय। उसकी जिंदगी में उसके ये भोगों को मुक्त करने के लिए और क्या चाहिए इससे ज्यादा कि वो एक घंटा मुस्कुराए। लौकिक में आप देखते हैं कि वो मुस्कुराना नहीं होता है, लाफिंग क्लब होते हैं, तो वो लाफिंग क्लब कोई उसके कर्म भोग को कर्म योग में नहीं परिवर्तन करते डेफिनेटली, क्योंकि वो आर्टिफिशियल क्रिएट करते हैं हंसी को। यहाँ हमारी जो मुस्कुराहट है वो नेचुरल है, नेचुरल होती है और वो अंदर से निकलती है, दिल से निकलती है। तो इसीलिए वो हमारे नए संस्कारों को अपने में अपनाने का एक नया बाबा चांस देता है। जैसे वहां बाबा बोलते हैं और यहाँ बाबा बोलने में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हजारों लाखों के योग के वाइब्रेशंस हैं, तो वो वाइब्रेशंस के बीच में, ओरा के बीच में हम रहते हैं, तो हमारे अंदर एक अद्भुत बल भरता है, उसको कहेंगे योग बल। तो बाबा कहता है कि योग बल ये ऐसा बल है बच्चे जो अन्य बलों से भी श्रेष्ठ है, जो साइंस बल, धन बल, जन बल, ये बल से कोई विश्व का महाराजा नहीं बनता है, योग बल से महाराजा बनते हैं। तो महाराजा बनने का तात्पर्य है कि सारे कर्म भोगों को चुक्त किया हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ही होता है ना। तो आज भी कल भी बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे जो योग करेगा कर्म भोग से मुक्त होगा वही विश्व का महाराजा बनेगा। तो हम कई बार संकल्प करते थे बाबा अभी तो विश्व इतना बड़ा है जहाँ 700 करोड़ आत्माएं रहती हैं, तो बाबा कहता है कि बच्चे वहां भी इतना ही बड़ा होगा, ऐसे नहीं कि कोई छोटा सा टापू होगा, नहीं बहुत विशाल होगा। बाकी ये जो अलग अलग राष्ट्र हैं वहां तुम्हारे पिकनिक केंद्र होंगे, वहां जहां जाकर के तुम ये अपने अपने पुष्पक विमानों से पिकनिक करेंगे, ऐसे बाबा बोलता है। बाबा की हर बात आप देखेंगे एक के बाद एक सत्य होती चलती है, कई बातें हैं। उस दिन भी बाबा कह रहा था जब 1981 की अव्यक्त मुरली में मेडिटेशन क्लास में क्लास हो रही थी, तब हजार एक व्यक्ति आए दो तीन तरफ, तो बाबा ने कहा आज ये जो ओम शांति भवन तुम बना रहे हो यह भी छोटा पड़ेगा, इससे भी बड़ा हाल बनाएंगे। तो ये देखिए उससे भी बड़ा हाल बाबा के अनुसार बाबा ने कहा 81 में और यह हाल बना 96 में। तो ऐसा बाबा के वाक्य फिर भी कहा बाबा एक दिन ऐसा भी आएगा जहां तुमको धरती और आकाश ये बैठने का होगा, धरती और छत आकाश होगी, ऐसा भी दिन आएगा बच्चे। तो ये बाबा जब कहता है ना तो अंदर से एक अद्भुत विचित्र खुशी जाग पड़ती है, वह खुशी ऑटोमेटिकली हमारे कर्म भोग को मुक्त करने का साधन बनती है। और वह जो खुशी हमको वहां मिलती है वह फिर हम कहीं बैठ करके मुरली पढ़े, बाबा कहते हैं अच्छा पढ़ लो, जब सुन नहीं सकते, परंतु नहीं, जो मुरली क्लास में सुनते हैं उसमें उस बहन के कई अनुभव होते हैं, वो भी मिलते हैं हमको, क्योंकि हम आज आए हैं। सुनाने वाले बहन पुरानी होगी तो कुछ भी होगी, ये जो पीठ होता है बाबा का वह बहुत विचित्र होता है, जो बाहर जो एक बार इस पर बैठता है पीठ पर वो उसको जो मूकम करोती बोलते हैं ना, जो मूक होता है उसको भी वाणी आ जाती है, तो नहीं बोलने वाला भी बोलने लगता है, और ऐसा भी अनुभव होता है, हमने अनुभव किया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कर्म भोग से कोई डर न करें, उसके बारे में चिंतित न होए कि भाई ये क्या हो गया, हमको ऐसा क्यों हुआ। बाबा तो कहता है कि ये क्या और क्यों की क्यों से तुम परे हो जाओ, और परे होना ही हमारी मुक्ति का साधन है, क्योंकि सारी दुनिया में क्यों क्या यही लगा पड़ा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। और ये क्यों क्या के कारण ही ये टेंशन होते हैं, ये स्ट्रेस होते हैं, और ये स्ट्रेस टेंशन के कारण ही कई बार हम कई रोगों से ग्रसित होते हैं, बीमारियां हमको आ जाती हैं, मालूम नहीं पड़ता है ये कैसे हुआ, परंतु ये नेचुरली ये स्ट्रेस और टेंशन। हम ज्ञान में हैं, हम सेंटर के टीचर हैं, हम सीनियर ब्रह्मा कुमार हैं, ये नहीं, ये स्ट्रेस सबको होता है, ऑटोमेटिक होता है, थोड़ा थोड़ा भी होगा तो होगा जरूर, कभी माथे में शिकन जरूर पड़ेगी, तो इतना भी होता है ना, तो वो भी हमारे बॉडी को असर करता है जरूर। इसीलिए दादियों से हम सुनते थे कि बाबा, हम भी कभी सोचते हैं कि बाबा 300-400 लोगों को 14 साल तक कैसे रहा होगा, आप सोचिए। क्योंकि एक बार बाबा के लिए ऋषिकेश के शिवानंद ऋषि ने कहा कि बाबा आप कमाल करते हो, क्योंकि 10 पुरुषों को एक तरफ रखा जा सकता है, 2 स्त्रियों को एक तरफ रखा नहीं जा सकता है, और आपने 14 साल तक रखा, इट इज मोर देन ए मिराकल, ये भी एक जादू है कि आपने कैसे रखा होगा। और दादियां कहती हैं बाबा कभी किसी को गुस्सा नहीं करते थे, कभी किसी ने नहीं देखा 33 ईयर्स के अवधि में कि बाबा किसी ने गुस्सा, हम तो रोज कई बार गुस्सा करते हैं, तो नाराजगी जाहिर करते हैं, तो ये नाराजगी भी होती है ना, ये भी एक स्ट्रेस ही है। तो इसीलिए मेहनत ये रहती है कि हम कितना मुस्कुराएं, जितना मुस्कुराएंगे ऑटोमेटिकली नेचुरली उसके अंदर योग भरा हो, और भी, क्योंकि ठहाके मार के हंसना अलग बात है। कई दादियां कहती थी मम्मा कभी ठहाके मार के हंसती नहीं थी, उसकी बहुत सुंदर मुस्कुराहट थी। तो ये जो हम ओम शांति बोल करके मुस्कुराते हैं, तो ये हमको हमारे कर्म भोग पर मुक्ति दिलाने का बहुत अच्छा साधन है। इसीलिए जितनी बार यहाँ आ सकते हैं, चलो करके थोड़ा खर्चा होगा, ऐसे भी खर्चा होता ही है, तो खर्चा होगा तो बाबा कहता है खर्चे की चिंता मत करो, हुंडी भर जाएगी। न केवल ये सेंटर वालों को बाबा कहता है, ये गृहस्थियों को भी, बाबा तो सबको बोलता है ना, तो बाबा तो सबका बाबा है ना, गृहस्थियों की बाबा है, धंधा व्यापारियों का भी बाबा है, तो जो हम यहाँ ईश्वरीय सेवा में खर्च करते हैं, उसके लिए भी बाबा कहेगा जरूर ना कि तुम खर्चा करते हो, ईश्वरीय सेवा में तुम्हारी हुंडी भरे रहेगी। तो कई कहते जब बाबा देता है तो बाबा क्यों नहीं काम कराएगा, काम तो बाबा कराएगा, आपके द्वारा कराएगा ना, कुछ भी कराएगा तो बच्चों के द्वारा ही कराएगा। एक दिन हम सब लोग बहुत मुस्कुरा रहे थे, खुशी हो रही थी, बाबा ने कहा अच्छा बच्चे तुम एक पैसा भी ना दो, विश्व महाराजा बन सकते हो, जैसे देखो ये मम्मा बन गई। फिर बाबा बोला बच्चे तुम आओगे तो तुम्हारे रहने के लिए स्थान बनाना चाहिए ना, वो कैसे बनेगा, वो तो आप देंगे तो बनेगा, आपके पैसे से बनेगा, बाबा को तो पैसे की जरूरत नहीं है, बाबा क्या करेगा आपके पैसे लेकर के। एक तरफ कहता है तुम्हारे एक पैसे की भी जरूरत नहीं है, फिर इतना सारा आगे बोलता है। तो बाबा भी बहुत होशियार है, एक बार वो दवा लगा देता है फिर बाद में इंजेक्शन देता है, तो ये भी बाबा की कमाल है। तो इसीलिए बाबा के जो भी मैंने देखा है, जितना ईश्वरीय सेवा में हम धन का भी सहयोग देते, तन का भी सहयोग देते, सबसे हमारे कर्म भोगों की मुक्ति होती है, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं होती है। इसीलिए जो भी कर्म हमको यहाँ आते हैं, हमने देखा एक बार की बात है, जब यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंसेस ऊपर होते थे, हमारे गेस्ट्स को बाहर होटल में रुकाया गया था,
मैं उनको लेने गया तो उनके साथ एक गाइड भी था, वो गाइड ही सारा उनको डायरेक्शन दे रहा था। मेरे बाजू था तो मैंने पूछा आप कहाँ से आए, बोला मैं गुजरात से आया हूँ। मैं क्या करते हो, बोला डॉक्टर है। तो मैंने समझा शायद होम्योपैथी का BHMS का होगा। मैं उनसे पूछा कौन से डॉक्टर हैं, तो कहा मैं एलोपैथी का MD हूँ। तो वो वहां पर गाइडिंग का काम कर रहा था। तो ऐसा ही यहाँ पर देखेंगे, जब हम शुरू में आए तो हमारे आत्म प्रकाश भाई टोली वाले आए तो MSc एग्रीकल्चर गोल्ड मेडलिस्ट है वो। तो वो उनको पूछा गया कि भाई तुम गोल्ड मेडलिस्ट होकर के यहाँ किचन में कैसे आ गए, तो कहा कि बाबा कहता है जैसा अन्न वैसा मन। तो ये भी एक आधार है, शुद्ध संस्कार संकल्प दे करके वैसे अन्न की उत्पत्ति करना जिससे कि किसी के शुद्ध मन हो। देखिए वो सिंपल जॉब पर वो आए, आज विश्व की सेवा पर लगे हुए हैं, ये एक वंडर है ना। तो ऐसा ही कई लोग हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता है। अभी मैंने एक भाई से पूछा, वो कहा कि मैं BSc MD क्या हो और सिंपल वर्क करते हैं यज्ञ में। एक भाई अभी आए थे, वो यहाँ एक सूर्यमणि भाई हैं, वो BSc BE हैं सोलर सिस्टम में, मेरे को नहीं पता था। वो हमारे यहाँ यज्ञ के हिसाब से सीधा सादा पैजामा शर्ट पहनते हैं। तो कई बार उनसे मेरी बातचीत हुई है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना हाईली एजुकेटेड है। तो मतलब हमारा एजुकेशन एक तरफ है, वो रोजी रोटी कमाने का है। यहाँ जो जॉब हमको मिला हुआ है, ये हमको 84 जन्मों के भाग्य को बनाने का है, ये हमारी समझ में आना चाहिए। हम पढ़े लिखे क्या भी होंगे लौकिक में, समझो किसी को भाषण करना नहीं भी आता है कोई बात नहीं, जिस कर्म में वो माहिर है, जिस कर्म में उसका इंटरेस्ट है, जो कार्य वो करने समझता है कि ये कार्य बड़ा अच्छा है, उस कार्य को करते हुए भी चलेगा तो भी वो प्रसिद्धि को पाएगा, ऐसा हमने देखा है। हमारे यहाँ किचन में भगवान भाई हैं, आप देखेंगे वो पढ़ा लिखा नहीं है, मगर अच्छे अच्छे पढ़े लिखों से ज्यादा उसके आर्ट उसके बातें यूट्यूब में है और ट्विटर करता है, सब करता है वो, और उसके उतने डॉक्यूमेंट और किसी के पास नहीं होंगे जो स्कूल्स में और जेल्स में सेवा उसने की है। तो ऐसे वो यज्ञ में आज देखिए होता है ना, यहाँ वो क्लास भी कराते हैं। तो हरेक को बाबा आगे हम आ जाओ एक बार इसमें, तो फिर ऑटोमेटिकली बाबा उसको धीरे 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 उन्नत स्थान देता जाएगा, और बाद में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा कि ये नारायण क्यों बना। नारायण तो बनना ही है ना, लक्ष्मी तो बनना ही है, परंतु वो नारायण लक्ष्मी बना या देवता बना उसके प्रति कोई संशय न करे, ऐसा ही होगा, उसका कार्य ऐसा होगा। तो ऐसे संपूर्ण स्वस्थ सर्व कर्म भोगों से मुक्त एक पदवी है जिसको हम श्री नारायण श्री लक्ष्मी बोलते हैं। तो ये कहाँ से मिलेगी, क्योंकि कोई को भी ऐसे ही ला करके बिठाएंगे तो प्रश्न उठेगा ना, ये क्यों यहाँ बैठा, हर एक के तेवर चढ़े हुए होंगे। पर यहाँ हम देखते हैं कि उसको ला करके उस पे बिठाया, बाबा ने बिठाया, तो बाबा की जो चॉइस होती है वो तो गलत नहीं होती है ना। तो वो हम देखते हैं कि छोटे छोटे कर्म, अब सेंटर्स में भी मैंने देखा, एक बहन हमारे पास वो आई भी, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी और गांव से थी, पर वो हमने मना किया उसको रहने के लिए, तो भी वो दो तीन बार के बाद बोला ये ऐसे झाड़ू पोछा करेगी रहेगी, इसको आप रख लीजिए। तब हमारा सेंटर भी बड़ा हो गया था तो हमने कहा ठीक है रख दो, और अचानक उस धीरे धीरे वो सब बहनें जब ब्रह्मा कुमारियों में आप जानते हैं 1 से 4 बजे तक शांति लगी पड़ी होती है तो वो रेस्ट में रहते हैं, तो वो रेस्ट में न रह करके उसने अ सीख लिया और मुरली पढ़ना सीख लिया, आज वो एक अच्छे सेंटर की इंचार्ज बहन है। ऐसे कई आपने देखे हैं सेंटर्स में चलते हैं बहने जो आए थे छोटे कार्य के लिए, इसीलिए कोई भी बहन या भाई
छोटा कार्य न समझे, वो कार्य करते चले, बाबा ऑटोमेटिकली उसको अपग्रेड करेगा और अच्छी पदवी देगा, यहाँ संगम पर ही देगा। इसीलिए कोई अब संगम पर ये सारा हिसाब किताब ही होता है, कहाँ कोई पैदा होता है, पूरा गरीब के घर में वो हिसाब किताब ही होता है, श्रीमंत के घर में भी पैदा होता है तो वो भी हिसाब किताब ही होता है। ऐसे नहीं कि वो कोई ऑटोमेटिकली जाकर के जैसे कोई अंबानी के घर में जन्म लिया हो, और ऐसा नहीं होता है, उसके अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से। परंतु बात यह होती है कि वो कितना सुखी है, कितना आनंदमय जीवन वो बिता रहा है, आर्टिफिशियल है या अंदर ही अंदर है, ये भी एक देखने की बात होती है। तो ऐसा एक श्रेष्ठ बहुत अच्छा सुंदर जीवन जहाँ कोई रोग न हो। अब कहेंगे हमको तो रोग होता है, हम कहते हमको रोग तो होता है पर हम रोगी नहीं बनते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, इसको आप अनुभव करेंगे, क्योंकि ज्ञान है ही अनुभव का, पढ़ाई ज्ञानी बनने का नहीं है, केवल ज्ञानी बनने का नहीं है, यहाँ अनुभव चाहिए। और अनुभव होता है, अनुभव करेंगे तो होता है, इसीलिए ये ध्यान पर हमारे बात रहे कि हमको यहाँ अनुभवी बनना है, और ये कर्म भोग नहीं, रोगी रोगी नहीं, बल्कि जैसे समझते हैं ना, पेशेंट और पेशेंस, ये इंग्लिश के दो बड़े अच्छे शब्द हैं, पेशेंस और पेशेंट। पेशेंट न हो, पेशेंस हमारे अंदर हो, और पेशेंस दैवी गुणों में एक गुण है। कितना उसको कोई व्यक्ति कितना सहनशील बनता है, कितने अपने अंदर समाने की उसके अंदर शक्ति है, ये एक कार्य है। इसीलिए कर्म भोग से कोई परेशान न हो करके बाबा की याद में रहे, बाबा की सेवा में रहे, बाबा के ज्ञान को जितना गहराई से समझने की कोशिश कर सकते हैं करें, जितना ऑटोमेटिक अच्छी दिल से वाह बाबा वाह मैं वाह ड्रामा कहें और मुस्कुराते रहें, यही कर्म योग, वो कर्म योग है जो हमें 63 जन्मों के कर्म भोगों से मुक्ति दिला सकता है, और हमको किसी भी हालत में ये मुक्ति पानी ही है। ओम शांति।